समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
अपने आप पर विश्वास करना एक अंतहीन साहसिक कार्य की शुरुआत है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज का आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। रेनू, आपको भी मेरा नमस्कार।
आपको भी मेरा नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 7th of February। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस मुकेश।
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं राष्ट्र की प्रगति को गति प्रदान कर रही हैं। राज्यसभा में कल राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग को अधिक धन देकर सशक्त बनाने के सरकार के फैसले का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा है और उनकी सरकार इस नए वर्ग के साथ मजबूत प्रतिबद्धताओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ जनता गरीबी से बाहर आ गई है, जो देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार के विकास का मॉडल राष्ट्र प्रथम है। ये तुष्टिकरण की बजाय संतुष्टिकरण पर केंद्रित है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने इस मॉडल को परखकर समर्थन दिया है और इसीलिए सरकार को तीसरी बार जनादेश मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए संसाधनों का पूरा उपयोग करना और वंचित समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित रखना सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की उपलब्धियों, भारत से दुनिया की आशाओं, देश की आम जनता के आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प का विस्तृत ब्यौरा है। प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया।
Vice President Jagdeep Dhankar remarked that fiscal prudence and frugality must never compromise operational efficiency. Addressing the Indian Defence Account Service probationers of the 2022 and 2023 batches in New Delhi yesterday, Mr. Dhankar urged probationers to never create problems in the disbursement of pensions of ex-servicemen and suggested always ensure financial integrity in their careers. He added that being in service of Bharat, home to 1/6 of humanity, is a blessing. Speaking on financial discipline, the Vice President asserted that the lawful route of integrity is the safest route. He also stressed the need for strengthening family ties, promoting indigenous knowledge and fostering inclusivity.
भारत ने बांग्लादेश में उपद्रवियों द्वारा शेख मुजीबुर रहमान का आवास नष्ट किए जाने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान आक्रमणकारी और अत्याचारी ताकतों के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो लोग बांग्ला पहचान और गर्व को पोषित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम को महत्व देते हैं, वे बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए इस निवास के महत्व को जानते हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि इस बर्बरतापूर्ण कृत्य की निंदा की जानी चाहिए।
The Reserve Bank of India, RBI, will announce today the decision of its Monetary Policy Committee, MPC, meeting amid widespread expectations of 25 basis points reduction in interest rate after a gap of nearly 5 years. New RBI Governor Sanjay Malhotra, who chaired his first MPC meeting, is expected to announce the decision of the 6-member panel this morning. The 3-day meeting of the MPC started on Wednesday. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India, ASSOCHAM, yesterday said the rate cut can enhance liquidity in the banking system and will also revive consumption and fiscal discipline.
यूरोपीय संघ के बुनियादी अधिकारों से जुड़ी संस्था ने कहा है कि यूरोपीय संघ के देशों में शरण चाहने वाले जिन लोगों के आवेदन रद्द किए गए हैं, उनके लिए प्रस्तावित आवासीय केंद्रों में बुनियादी अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। एजेंसी के अनुसार ऐसे केंद्रों में रहने वालों को सभी अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यूरोपीय संघ अपने संगठन से बाहर ऐसे अस्थायी केंद्र बनाना चाहता है जहां निरस्त आवेदक रह सकें। एजेंसी ने कहा कि स्वदेश भेजे जाने वाले निरस्त आवेदकों के लिए प्रस्तावित केंद्र में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए जिससे वे वहां कानूनी और मर्यादित तरीके से रह सकें।
President Donald Trump has signed an executive order imposing sanctions on the International Criminal Court, accusing it for illegitimate and baseless actions targeting America and its close ally Israel. The measure places financial and visa restrictions on individuals and their families who assist in ICC investigations of American citizens or allies. The order Trump signed said the ICC has no jurisdiction over the United States or Israel, adding that the court had set a dangerous precedent with its actions against both countries. Trump's action came as Netanyahu was visiting Washington. Neither the US nor Israel is a member of or recognizes the court. And now news from the Mahakumbh.
और रेनू, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 68 हिंदू श्रद्धालुओं का एक दल कल प्रयागराज पहुंचा और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने बताया कि श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर धार्मिक अनुष्ठान किए और पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत से श्रद्धालुओं ने इस महाकुंभ में शामिल होने को लेकर द्रुत गति से वीजा जारी करने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
And Mukesh, a digital exhibition has been set up at the Mahakumbh Mela in Prayagraj to educate public about the 3 new criminal laws in the country. The laws are Bharatiya Nyay Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and the Bharatiya Sakshay Adhinayam. The new laws were implemented nationwide on 1st July last year, representing a historic shift in India's judicial system. A new framework has been introduced to address contemporary challenges like cybercrime and organized crime while ensuring justice for the victims. Our correspondent reports that the new laws have replaced the Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and Indian Evidence Act, and we have more on this report.
The Mahakumbh Mela is not just a gathering of faith, but also educating devotees about their legal rights and digital tools for justice. Central government and Uttar Pradesh government has set up different stalls to make awareness about the 3 new laws. Talking to Akashwani News, head operator of Uttar Pradesh Police, Omkar Gupta, said that they are providing information to the public about these new laws in simple language.
पुराने जो कानून थे वो काफी जटिल थे, लेकिन जो नए कानून आए हैं इसमें काफी जनता को सहूलियत है। उसकी FIR जल्दी लिखी जाती है, अगर FIR नहीं तो कानून पे धाराएं लगा करके और उसके बाद निस्तारण जल्दी से हो और उसकी चार्जशीट जल्दी फाइल की जाए।
An artist Munnalal Yadav said that they are generating awareness among people about their rights and 3 new laws through street drama.
हम कलाकार अपने गीत के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से इस कुंभ मेले में ये दिखा रहे हैं कि आप जगिए और एक कुशल व्यक्तित्व का परिचय देते हुए आप स्नान करिए, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचिए और आप स्नान करते हुए निकलते रहिए।
द न्यू लॉज हैव बीन डिजाइन टू मेक इंडियाज जस्टिस सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड अलाइंट विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। विद दीपेंद्र कुमार, अमन यादव, आकाशवाणी न्यूज, प्रयागराज।
और आज सवेरे में अब वक्त हुआ है प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरें जानने का। तो रेनू, आप बताएं पहले चेन्नई में क्या खबरें हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, The Tamil Nadu Police Hackathon was held at the Cyber Crime Win headquarters at Chennai yesterday. Young coders and tech enthusiasts collaborated with law enforcement officials to tackle cyber crime such as dark web transactions, cryptocurrency fraud and telegram scams. From 315 initial submissions, 54 teams advanced to the first round and 15 finalists were chosen after evaluation by experts from IIT Madras and Alcott. One of the challenges focused on developing an AI system called Dark Eye to track illegal activities on the dark web, helping law enforcement identify hidden threats. Another task, Tor Unveil, aimed at uncovering the identities of users on Tor Mail, a platform often used for secret and illegal communication. Wipecrack was designed to intercept and analyze VoIP calls, which scammers frequently use to avoid being traced. Participants also worked on a system to monitor Telegram groups for fraudulent investment schemes, which are widely used to deceive victims. Another key challenge involved detecting and analyzing social media ads promoting cyber frauds, helping authorities flag deceptive advertisements before they spread. And there's more news that I have from Chennai, Mukesh. The metro rail construction in Chennai is set up to be stepped up and is likely to result in traffic diversions. A total of 63 buses operating from Villivakkam bus terminus will be relocated to ICF bus terminus. However, small buses plying between Velachery, Perambur and Villivakkam will continue to run for passenger convenience. CMRL has also planned property development at MBM Nagar in Thirumangalam, Nandanam and Thousand Lights as part of its non-fare revenue generation strategy. The developments will be integrated with metro stations, providing seamless connectivity to entry and exit points. A contract agreement has been signed for the preparation of detailed project report, feasibility report including submission of land use report to the Chennai Metropolitan Development Authority and the Greater Chennai Corporation for approval, cost estimate and tender documents.
और अब बात करते हैं मुंबई के समाचारों की. महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल मुंबई में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यपाल ने कहा कि समावेशी और संवेदनशील समाज बनाने के लिए सामाजिक दायित्व हर नागरिक को महसूस करना चाहिए. श्री राधाकृष्णन ने कहा कि कंपनियां मुंबई को एक स्वच्छ और हरा भरा शहर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं. प्रसिद्ध लेखक और वरिष्ठ क्रिकेट कमेंटेटर द्वारकानाथ संजगिरी का कल मुंबई में निधन हो गया. वे 74 वर्ष के थे. उन्होंने लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री संजगिरी का स्थान अद्वितीय था. लगभग 50 वर्ष के करियर में संजगिरी ने एक स्तंभकार, लेखक, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और संगीत कार्यक्रम की मेजबानी के रूप में अपना नाम स्थापित किया था. महाकुंभ के साथ ही महाराष्ट्र सरकार नाशिक जिले के गंगापुर में महाराष्ट्र इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल का आयोजन कर रही है. इस उत्सव का उद्देश्य अगस्त 2027 में निर्धारित सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले नाशिक को धार्मिक केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है. ये महोत्सव 31 मार्च तक चलेगा और पश्चिम रेलवे ने अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक बिना टिकट यात्रा करने वालों से 117 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला है. जनवरी 2025 में पश्चिम रेलवे ने बिना बुक किए गए सामान के मामलों सहित 2,24,000 बिना टिकट या अनियमित यात्रियों से 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली है.
एंड मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो न्यूज. द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु फ्रॉम फरवरी 12 टू 14 विल सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम 19 कंट्रीज. कर्नाटका मिनिस्टर फॉर लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एम बी पाटिल हैज इन्फॉर्म दैट इन्वेस्टर्स मीट विल शोकेस कर्नाटकाज फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रीइन्फोर्सिंग इट्स पोजिशन एज इंडियाज लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग R&D and emerging industries. The minister said that Karnataka will be positioned as a top investment destination in the area of aerospace, renewable energy, electronics, semiconductors and advanced manufacturing. The global investors meet will also focus on small and medium enterprises and startups. And the last news that I have is from Hyderabad. Before we move on to you, Mukesh.
जी, बात कर लेते हैं कोलकाता की.
अच्छा, चलिए.
48वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कल 11वां साहित्य महोत्सव शुरू हुआ. ये 8 फरवरी तक चलेगा. प्रसिद्ध लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस वर्ष समरेश मजूमदार स्मृति पुरस्कार प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और साहित्यकार अंजन दत्ता को दिया जाएगा। इस बीच कोलकाता में 24वां नाट्य मेला भी चल रहा है। 5 फरवरी को शुरू हुआ यह मेला 13 फरवरी तक चलेगा। इस साल रविन्द्र सदन, शिशिर मंच, गिरीश मंच, एकतारा मुक्तो मंच और कोलकाता के अन्य स्थानों पर 120 से अधिक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो और विभिन्न नाटक भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
एंड मूविंग ऑन टू हैदराबाद, तेलंगाना'ज नाइशा बजाज एंड हर्षा रत्नागर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ब्रॉट ग्लोरी टू द स्टेट बाय क्लिंचिंग गोल्ड इन द प्लस 70 केजी कैटेगरी एंड सिल्वर इन द माइनस 80 केजी कैटेगरी रिस्पेक्टिवली एट द रिसेंटली कंक्लूडेड 4th इंडियन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट KD जादव इंडो स्टेडियम एट इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। द कॉम्पिटिशन फीचर्ड ओवर 1,000 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मोर देन 20 कंट्रीज। और ऐसे ही हमें अच्छी अच्छी न्यूज स्पोर्ट्स में मिलती रहे, हमारे बच्चे कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं और गोल्ड लेके आ रहे हैं इंडिया के।
बिल्कुल
लिए।
बिल्कुल,
कूडोस टू देम।
और रुक करते हैं दिल्ली की खबरों का। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी, इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज ने बताया कि सुचारू और निष्पक्ष मतगणना के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C समेत चुनाव दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक, प्रत्याशी और उनके एजेंट तथा रिटर्निंग अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि जांच प्रक्रिया के दौरान उन्हें किसी भी उम्मीदवार से कोई शिकायत नहीं मिली है। सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। दिल्ली में 19 स्थानों पर एक एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। और दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला जारी है, बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी मेले में पहुंच रहे हैं। इस वर्ष मेले का विषय हम भारत के लोग हैं, जो भारत गणराज्य के 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव को दर्शाता है। और इस बार पुस्तक मेले में 50 से अधिक देशों के करीब 2,000 प्रकाशक भाग ले रहे हैं। और रेनू 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आज से शुरू होगा। इस बार मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिम्स्टेक देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड की कंपनियां अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। और रेणु, सभी समाचार हो गए, देश के अंतर्राष्ट्रीय भी और महानगरों के समाचार भी।
बिल्कुल।
और अब बारी आती है खेल जगत के समाचारों की। तो सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं। नागपुर में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 4 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने 249 रन का लक्ष्य आसानी से 68 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे अधिक 87 रन, श्रेयस अय्यर ने 59 और अक्षर पटेल ने 52 रन बनाए। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 48वें ओवर में 248 रन पर सिमट गई। हर्षित राणा और रविन्द्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए।
एंड फ्रॉम क्रिकेट लेट्स गो टू द नेशनल गेम्स। मुकेश, at the ongoing 38th national games in Uttarakhand, four-time olympian Deepika Kumari bagged a gold medal in the women's recurve individual event at the national games 2025 yesterday. In the women's recurve individual final, Deepika Kumari saw off a spirited challenge from Anshika Kumari to win the decider. In the men's recurve individual event, Jewel Sarkar claimed the gold medal with a victory over Indira Chand. Medal winners were decided across all categories in the recurve archery division, and archery will come to a close at the 38th National Games today. For our listeners, the National Games 2025 began on January 28 and will run till February 14.
और चीन के हरबिन में एशियाई शीतकालीन खेलों का उद्घाटन समारोह कल होगा। भारत ने प्रतियोगिता में 59 सदस्यीय मजबूत दल भेजा है। आइस हॉकी मुकाबले 3 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, लेकिन उद्घाटन समारोह के साथ टूर्नामेंट की आधिकारिक शुरुआत कल से होगी। भारत अब तक खेलों के पिछले 8 संस्करण में शामिल हो चुका है, लेकिन अब तक कोई पदक नहीं जीत पाया है। 3 बार की भारतीय नेशनल चैंपियन फिगर स्केटर तारा प्रसाद और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर स्वार्ली देव भी इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे, मुकेश कुमार और रेणु कटारिया के साथ। और कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले दिल्ली का हाल बताएं।
बिल्कुल,
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज दिन में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुंबई का रुख करें तो आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में पारा 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है और कोलकाता में सवेरे के समय धुंध छाई रही, बाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो रेनु, आप बताएं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा है मौसम?
बिल्कुल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 16 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और कार्यक्रम में वक्त हुआ है इतिहास को पलटने का। जानते हैं 7 फरवरी के दिन इतिहास में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1831 की। 1831 में बेल्जियम में आज ही के दिन संविधान लागू किया गया था।
In 1914 on this day, English actor, comedian and filmmaker Charlie Chaplin debuted his iconic character The Tramp in the film Kid Auto Races at Venice.
और 1915 की बात करें तो आज एक दिन चलती रेलगाड़ी से पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन पर प्राप्त हुआ था। 1935 में आज ही के दिन मशहूर बोर्ड गेम मोनोपोली को कॉपीराइट प्रदान किया गया था और इसे अमरीकी आविष्कारक चार्ल्स डैरो ने बनाया था। मोनोपोली गेम को भारत में बिजनेस या व्यापार के नाम से जाना जाता है। मोनोपोली को 100 से अधिक देशों में खेला जाता है और ये गेम 40 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। मोनोपोली काफी लंबे समय तक चलता है। सबसे लंबा मोनोपोली खेल 70 दिन तक खेला गया था।
आपने खेला है?
जी, मैंने भी खेला।
जी।
और 1940 की बात करें तो आज ही के दिन ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि 1959 में फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के नए संविधान की घोषणा की थी।
In 1954, the present crest, the motto "शास्त्र से शक्ति" was adopted. In 1989, Hindi lettering of "शास्त्र से शक्ति" was adopted. In 1964, the Beatles landed at New York's JFK Airport to begin their first US tour, giving birth to the Beatlemania. In 1974 on this day, Grenada gained independence from Britain after 3 centuries of colonial rule. On this day in 1984, American astronaut Bruce McCandless made the first untethered spacewalk. And on the same day, that is 7th of February 1993, medium range surface-to-surface missile Prithvi was successfully launched for the 10th time. In 1999, Abdullah II became king of Jordan after the death of his father Hussein. And in the same year, Indian leg spinner Anil Kumble became the second only bowler in Test history after J.C. Laker of England to take all 10 wickets in an innings against Pakistan in the second test in Delhi. आपके पास कुछ है या मैं चलूं 2018?
जी जी, 1983 में कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, जबकि 1992 में स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहली पनडुब्बी INS शाल्की को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और 2006 की बात करें तो आज ही के दिन नेपाल में स्थानीय निकायों हेतु मतदान संपन्न हुआ।
एंड इन 2018 इट वॉज रिलीव्ड, मुकेश ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट वॉज रिवील्ड दैट ऑल सिट्रस फ्रूट्स ओरिजिनेटेड इन द सदर्न फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज मिलियंस ऑफ इयर्स अगो।
और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल को। वे राष्ट्रीय और क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदार होने के साथ ही क्रांतिकारियों की नई पीढ़ी के प्रतिनिधि भी थे। इसके साथ ही वे गदर पार्टी और अनुशीलन संगठन के दूसरे स्वतंत्रता संघर्ष के प्रयासों की महान कार्यकर्ता और संगठनकर्ता थे। 1923 में उनके द्वारा खड़े किए गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ही भगत सिंह और अन्य साथियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के नाम से विकसित किया था। और शचीन्द्रनाथ सान्याल को जीवन में 2 बार काला पानी की सजा दी गई थी। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन के साथ ही देश बंधुओं के नाम एक अपील जारी की थी, जिसमें उन्होंने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ और संपूर्ण एशिया के महासंघ बनाने की परिकल्पना भी प्रस्तुत की थी।
Mukesh, people leave this mortal world, but their voice, their legacy keeps going on. And one such voice that I'm going to talk about here is of singer Matt Monro. So Matt Monro was an English singer known as the man with the golden voice. He performed internationally during his 30-year career and sold a reported 23 million records. AllMusic had described Monro as one of the most underrated pop vocalists of the 60s, who possessed the easiest, most perfect baritone in the business. And Frank Sinatra, jisko hum bahut sunte hain, said of Monro after his death, "If I had to choose three of the finest male vocalists in the singing business, Matt would be one of them." To yahan pe hum unka ek bahut pyara sa gana from the movie Born Free pehle sun lete hain.
Ji bilkul.
Born free, as free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart.
और आज ही भारतीय फिल्म और छोटे पर्दे के अभिनेता प्रवीण कुमार सोपती की पुण्यतिथि है। उन्हें बीआर चोपड़ा के मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने के कारण ख्याति मिली थी। प्रवीण कुमार ने अपने करियर में एक्टिंग के अलावा खेल में भी हिस्सा लिया था और वो एथलीट भी थे। उन्होंने दो बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो क्यों ना रेनू, उनका जो भीम का किरदार था उसका डायलॉग सुन लिया जाए।
बिल्कुल।
इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीरकर इसके लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मूल दिखाऊंगा।
और भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार की आज जयंती है। हिंदी की अधिकांश फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनाया था। अभिनेता सुजीत कुमार भोजपुरी फिल्मों के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। जब 60 और 70 के दशक में भोजपुरी फिल्मों की नैया डूबने वाली थी, उस वक्त भोजपुरी फिल्मों में सुजीत ने संजीवनी फूंकने का काम किया था। और उन्होंने हिंदी जो फिल्में की हैं उसमें आराधना, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, महबूबा, आंखें, कई फिल्में हैं। तो क्यों ना आराधना का ये गाना अपने श्रोताओं को सुनवा दें।
बिल्कुल सुनाते हैं।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आए।
And today is the birthday of Troil Garth Brooks, who is an American country singer and songwriter. His integration of pop and rock elements into the country genre has earned him his immense popularity, particularly in the United States, with success on the country music single and album charts, multi-platinum recordings and record-breaking live performances, while also crossing over into the mainstream pop arena. Let's listen into this beautiful song, Against the Grain, sung by Tony Brooks.
Folks call me Maverick, yes, I ain't too diplomatic, I just never been the kind so long. Just avoiding confrontation for the sake of the confirmation, and I'll admit I tend to sing a different song. Sometimes you just can't be afraid to wear a different hat. If Columbus had been fighting, this old world might still be.
और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत का आज जन्मदिन है। उन्होंने बैडमिंटन में कई शानदार सफलताएं प्राप्त की हैं। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर की जिया हिंग तेह को हराकर देश के लिए कांस्य पदक जीता था। इससे पहले भी उन्होंने अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 25 जून 2017 को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में उस समय उलटफेर किया था।
और एक और बर्थडे हम एक बहुत ही अच्छे सिंगर के बारे में बताना चाहते हैं। जसबीर सिंह बेंस, बेटर नोन बाय स्टेज नेम जसबीर जस्सी, इज एन इंडियन सिंगर, लिरिसिस्ट, परफॉर्मर एंड एक्टर। एज ऑफ 2016 ही हैज रिलीज 13 एल्बम्स, हिज फर्स्ट पॉप एल्बम बीइंग दिल ले गई, रिलीज्ड इन 1998 विद टाइम्स म्यूजिक। पर यहाँ पे हम एक ओंकार फ्रॉम द फिल्म केसरी सुन लेते हैं।
जी बिल्कुल।
निरपो
और श्रोताओं, आपसे विदा लेने का समय आ गया है, तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए मुकेश कुमार और रेनू कटारिया को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की अनुमति।
Stay tuned, yeah, but coming up next is समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्कार।